नमस्कार भारत, आज है 19 अक्टूबर दिन गुरुवार। सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। अमरीकी विदेश मंत्री ने साझा किया आगामी भविष्य में भारत से रणनीतिक साझेदारी का विजन, चीन से की सीधी तुलना।
President Trump and Prime Minister Modi are committed more than any other leaders
before. योगी आदित्यनाथ सरकार के दिवाली कार्यक्रम पर क्या कहते हैं अयोध्या के मुसलमान?
क्या अयोध्या में इससे पहले दिवाली नहीं मनाई गई? क्या उनकी आस्था नहीं थी इससे पहले? वो उसी आस्था से जो दिवाली मनाते थे, वो दिवाली वाकई राम को पसंद आएगी, ये दिवाली नहीं पसंद आएगी।
सुनिएगा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का खास इंटरव्यू, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने अगली सदी में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए अमेरिकी दृष्टिकोण पेश किया है। अगले सप्ताह अपने दक्षिण एशियाई दौरे से पहले बोलते हुए टिलरसन ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए भारत को एक मजबूत सहयोगी के रूप में देखता है। टिलरसन ने भारत और चीन के बीच सीधी तुलना भी की है। टिलरसन ने कहा है कि चीन कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को नजरअंदाज कर देता है। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों का उल्लेख भी किया। दूसरी ओर बीजिंग में चीन की सत्ताधारी वामपंथी पार्टी के सम्मेलन में बोलते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका बड़ी करेगा। नाइजर में सैन्य अभियान के दौरान मारे गए एक अमरीकी सैनिक की पत्नी से बातचीत में की गई अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। सैनिक की मां ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिक की विधवा को पूरा सम्मान नहीं दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद ने भी ट्रंप पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने सैनिक की पत्नी माइशिया जॉनसन से कहा था कि उनके पति को पता था कि वो किस काम पर जा रहे हैं। सफाई देते हुए ट्रंप ने कहा है, मैंने वो नहीं कहा है जो वो महिला सांसद कह रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अब वो भी इस बात को नहीं दोहरा रही हैं। मैं भी चाहता हूं कि वो दोबारा बयान दें, क्योंकि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है जैसा वो कह रही हैं। मेरी उस महिला से बहुत अच्छी बात हुई थी। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने पता किया है कि बीते 30 साल में उड़ने वाले कीड़ों की संख्या में भारी कमी आई है। जर्मनी के 63 प्राकृतिक क्षेत्रों में किए गए शोध में पता चला है कि कीड़ों की संख्या में 3/4 तक की कमी आ गई है। इनमें तितली, मधुमक्खियां और कीट पतंगे शामिल हैं। शोधकर्ता हॉन्स टिक्रोन का कहना है कि कीड़ों की संख्या में ये भारी कमी चेताने वाली है। कीड़े न सिर्फ परागण में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि चिड़ियां भी खाने के लिए उन पर निर्भर हैं। एक अन्य शोधकर्ता कॉस्पर हेलमेन ने बीबीसी से कहा, कीड़ों की कई प्रजातियां चिड़ियों, सरीसृपों, चमगादड़ों के लिए भोजन उपलब्ध कराती हैं। हर वो प्रजाति जो भोजन के लिए कीड़ों पर निर्भर है, उसके सामने अब खाने में 75% की कमी है। यही नहीं, पेड़ पौधे भी परागण के लिए कीड़ों पर निर्भर होते हैं। ये कीड़े पारिस्थितिकी तंत्र के पोषक तत्व चक्र का भी अहम हिस्सा है। ऐसे में 75% की कमी सभी प्रक्रियाओं के लिए खतरा है। ब्राजील की एक संसदीय समिति ने राष्ट्रपति मिशेल टेमेर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा न चलाने के लिए मतदान किया है। राष्ट्रपति पर यह आरोप दुनिया की सबसे बड़ी मास पैकिंग फर्म JBS में हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़े थे। ब्राजील के संविधान के तहत टेमेर पर आपराधिक मामला चलाने के लिए संसद के निचले सदन में 2/3 बहुमत जरूरी है। अगस्त में रिश्वत लेने के आरोपों पर हुए संसदीय मतदान में भी टेमेर बच गए थे। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। रूस की चर्चित हस्ती सेनिया सोबचाक का कहना है कि वो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगी। माना जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी के पीछे सत्ता प्रतिष्ठान हो सकते हैं जो चुनावों में प्रतिद्वंद्विता दिखाना चाहते हैं। बीबीसी समाचार।
आप आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। श्रोताओं, आज दीपावली है और हम ये आशा करते हैं कि दियो के प्रकाश के साथ आपके जीवन में भी उजाला आए, बेनूर बस्तियों तक रोशनी पहुँचे, खुशियाँ पहुँचे। बीबीसी रेडियो के पुराने प्रतिबद्ध और नए नौजवान श्रोताओं को दीपावली की शुभकामनाएं वहां तक जहां सूरज से मिलता है समुद्र। शुरुआत करते हैं भारत के लिए महत्वपूर्ण एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। भारत कभी गुटनिरपेक्ष देशों में था, फिर रूस के करीब आया और बाद के दिनों में अमेरिका से उसके करीबी संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों के संबंधों पर एक बड़ा बयान अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने दिया है। अगले हफ्ते वह भारत और पाकिस्तान की यात्रा पर आ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा है कि इस सदी में भारत उसका अहम रणनीतिक साझेदार रहने वाला है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
इन ग्रांटिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी यू हैव ऑनर्ड the world's largest democracy and its 1.25 billion people.
इसी साल जून में अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे संबोधन का मौका देकर आपने भारतीय लोकतंत्र और उसके 125 अरब लोगों का सम्मान किया है। अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता प्रभुत्व के बजाय सहभागिता का होगा, और अब अमेरिका भारत के करीब आने की बात कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वॉशिंगटन में एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए टिलरसन ने यह भी कहा है कि अमेरिका और भारत ग्लोब के दोनों छोर पर स्थिरता के दो आधार हैं। टिलरसन ने यह भी कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर नजरिया एकदम स्पष्ट है। रेक्स टिलरसन ने कहा,
प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी आर कमिटेड मोर देन एनी other leaders before them to building an ambitious partnership.
राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच ऐसी महत्वाकांक्षी साझेदारी स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिससे न सिर्फ दुनिया के इन दो महान लोकतंत्रों का फायदा होगा बल्कि शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों को भी फायदा होगा। ये दोनों नेता पहले के किसी भी नेता से ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा ने हमारे रणनीतिक साझेदारी के इस नए क्षेत्र के कई अवसरों को रेखांकित किया था। टिलरसन ने यह भी कहा है कि एशिया में चीन के नकारात्मक असर को देखते हुए अमेरिका भारत को अहम सहयोगी के रूप में देख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की अगले महीने अपनी पहली सरकारी चीन यात्रा से पहले दिए गए इस बयान में टिलरसन ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने एशिया में चीन के ढांचागत निवेश का विकल्प तलाशने पर चर्चा भी शुरू कर दी है। अमरीकी विदेश मंत्री ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के संकेत ऐसे समय में दिए हैं जब चीन में सत्ताधारी वामपंथी पार्टी का अहम सम्मेलन चल रहा है और चीन दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत दिखा रहा है। एशिया और विश्व में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में क्या अमेरिका के भारत के करीब आने की रणनीति कारगर हो पाएगी, ये भविष्य में ही पता चल सकेगा। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन अगले सप्ताह भारत और पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे।
दिलनवाज पाशा से ब्यौरा सुन रहे थे आप। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली के एक बयान ने कुछ नए सवाल खड़े कर दिए हैं। निकी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत अगर इसकी स्थायी सदस्यता चाहता है तो उसे वीटो ताकत का विचार त्यागना होगा। हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने पूर्व भारतीय राजदूत अनिल त्रिगुनायत से संपर्क किया और यह समझना चाहा कि सुरक्षा परिषद में भारत को प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा, और मिला भी तो वीटो पावर के बिना उसकी स्थिति क्या होगी।
अभी इस वक्त अपना जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अपनी जगह मांग रहा है वो इसलिए नहीं मांग रहा है कि कोई खराब में उसको दे, ये उसका एक हक है, क्योंकि जमीनी तौर पे जो बातें 1945 में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थी वो सब बदल चुकी है और हिंदुस्तान फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, और इसलिए 70 साल के बाद भी अब अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा पूरी तरह तो ये गलत बात है। दूसरी चीज रही जहां तक है वीटो पावर का सवाल और निक्की हेली जी का जो एक स्टेटमेंट आया है उसमें मैं ये समझता हूं कि उन्होंने एक इंटरिम सी बात कही है। और आपको जहां तक मालूम होगा इस टाइम पे G4 कंट्रीज ने जो हमारा ग्रुप है उसमें हम लोगों ने ये एग्री भी किया था कि भाई शुरू में 8-10 साल के लिए अगर जरूरत है तो ये कंट्रीज जो है अपने बिना वीटो पावर के भी, बट दे उन्होंने गिव अप नहीं किया है वीटो पावर। वीटो पावर तो रहेगी, अगर नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है बेसिकली कि 5 कंट्रीज के पास रहे तो वो उसमें हैव्स और हैव नॉट्स का टक्कर है। तो इक्वालिटी सारे यूनाइटेड नेशंस की जो खास बात है वो यही है कि सारे मुल्क जो हैं वो बराबर हैं। परमानेंट मेंबर के पास सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर होती है तो वो इंडिया या जो भी है दूसरे मुल्क होंगे उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन राइट को हम गिव अप नहीं कर सकते किसी भी तरह। और ये मैं समझता हूं कि उनका जो है एक ऑफ द कफ रिमार्क है, लेकिन अकेले अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप।
अगर भारत सदस्य बनता है सुरक्षा परिषद का और साथ ही अगर उसको वीटो पावर मिलती है तो इससे वैश्विक स्तर पे कैसा असर पड़ सकता है?
एक कोल्ड वॉर और एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की एक जो रूपरेखा देशों के बीच की इक्वेशंस थी उस समय विक्टर और वैंक्विश जिसे कहते हैं जीतने वाले और हारे वाले लोगों के बीच में किस तरह का संबंध स्थापित हुआ और उन्होंने कहा कि हम सारे दुनिया भर का किस तरह चलेगा उसको हम डिसाइड करेंगे। तो इसलिए कुछ जो कंट्रीज जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के लिए और वर्ल्ड पीस के लिए इतना काम किया है जैसे भारत है पीस कीपिंग में है, हिंदुस्तान सबसे आगे है, तो हमारा सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, 1/6 पॉपुलेशन है, तो उससे क्या होगा कि वीटो पावर में कई बार जिस तरह की आप देखते हैं कि लोग लॉ ऑफ द जंगल प्रिवेल करता है तो उसमें कुछ सैनिटी एक तरह की लाने में मैं समझता हूं कि भारत सक्षम है।
बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है, भारत को माना भी जाता है कि वह आर्थिक प्रगति कर रहा है और एशिया में चीन के बाद एक बहुत उभरती हुई शक्ति है, कि जो सुरक्षा परिषद का विस्तार है उसमें भारत को क्यों नहीं उस तरीके से जगह दी जा रही है?
यूएन रिफॉर्म्स जो अभी तक नहीं हो पाए हैं उसका कारण भी आप जानते हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों में आपस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर के ये बड़े 5 मुल्क जो हैं वो इंडिविजुअली तो सपोर्ट करते हैं लेकिन कलेक्टिवली उनका मैं नहीं समझता हूँ कि उसी जोर शोर के साथ वो सपोर्ट करते हैं कि भी ये स्प्रेड हो जाए, यू नो डिसीजन मेकिंग स्प्रेड हो जाती है। इससे जगह एक्सपेंशन होगा सिक्योरिटी काउंसिल का तो उससे आप समझ सकते हैं कि और ज्यादा मुल्क आएंगे तो उनको ज्यादा लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा अपनी बात करवाने के लिए।
ये थे पूर्व भारतीय राजदूत अनिल त्रिगुनायत। और अब बात भारत की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कल प्रदेश सरकार की ओर से दिवाली महोत्सव का आयोजन किया गया। सरकारी दावे के मुताबिक 1,71,000 दीपों को एक साथ प्रज्वलित किया गया। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है और इस शहर की पहचान पिछले कई सालों से मंदिर मस्जिद विवाद से भी जुड़ी हुई है। सरकार की ओर से प्रायोजित इस दिवाली कार्यक्रम को लेकर अयोध्या के मुसलमानों का क्या कहना है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने वहां के कुछ मुसलमानों से बात की, सुनिए।
भगवान राम के अयोध्या आने पर जो ये पर्व मनाया जा रहा है, इस पर्व में अगर समाज हर समाज के लोगों को जोड़ लिया जाए और हर समाज के लोग मिलकर दिवाली मनाएं तो एक आज अलग संदेश जाता है अयोध्या की धरती से, एकता और भाईचारे।
ये सारा कार्यक्रम हो रहा है इसमें मुस्लिम समाज के लोगों को भी किसी तरह का आने का निमंत्रण मिला है, समाज सेवी लोगों को, किसी को भी?
नहीं, ऐसा तो कोई हम लोगों को नहीं मिला है कि इस दिवाली में हम लोग योगी साहब के साथ आएँ और दिवाली मनाएँ।
तो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से ये त्यौहार है और बिल्कुल अलग तरीके से अयोध्या में मन रही है, त्रेता युग के बाद कहा जा रहा है कि पहली बार इतनी रौनक के साथ मन रही है, अयोध्या में दिवाली पे कभी इतनी रौनक रही कि नहीं रही?
आपके लाने से राम आ नहीं जाएंगे, न त्रेता युग आएगा, ये कलयुग है, कलयुग ही रहेगा। आप हर आदमी के दिलों में बसी।
तो पर्यटन वाली जो बात है तो इससे पर्यटक आएंगे, इससे आपको क्या लगता है?
अब ये तो समय बताएगा।
आप बताएं।
ये तो एक दो रोज का फंक्शन है, इसमें पर्यटक जो मौजूदा समय पे हैं वो देख सकते हैं, अपनी नजरों से लुफ्त ले सकते हैं, बाकी आने वाले तो जो 2-4 दिन बाद आएंगे उनको क्या मिलेगा यहाँ, वो तो वही फिर खंडहर अयोध्या मिलेगी।
मैं मुद्दई बाबरी मजीद मोहम्मद इकबाल अंसारी बोल रहा हूँ। हम लोग चाहते हैं कि जैसे ये दिवाली मना रहे हैं वैसे और भी मसले हैं यहाँ, हिंदू मुसलमान का भी तमाम धार्मिक स्थल हैं उसको भी देखें और दिवाली खूब भव्य जो है मनावाएं, इतनी सजावट कर दें अयोध्या में कि जो है आने वाले दिन में लोग याद करें कि हाँ कि अयोध्या में भी जो है हमने पहली बार ऐसी दिवाली देखा है।
ये सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हम संत हैं, महंत हैं, हम गद्दी पर बैठ गए हैं और हम सिर्फ जो है ऐसे काम करेंगे जिससे धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपने तरफ लोगों को आकर्षित करेंगे। लेकिन ये बताइए, क्या अयोध्या में इससे पहले दिवाली नहीं मनाई गई? क्या उनकी आस्था नहीं थी इससे पहले? वो उसी आस्था से जो दिवाली मनाते थे वो दिवाली वाकई राम को पसंद आएगी, ये दिवाली नहीं पसंद आएगी?
सभी लोग अयोध्या राजा फाटक में हम लोग जाते थे, वहाँ सब सामान खरीदा जाता,
वो मोहब्बत कोई खत्म नहीं कर सकता, न कोई खत्म।
हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ,
राजनीतिक लाभ के लिए टोटल जो है मनाई जा रही है, क्या हर बार क्या सीएम आएंगे? नहीं ना आएंगे। और अच्छा, इसमें
एक चीज मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको, ये जो आज की रौनक है, इस रौनक में अयोध्या वाले कितने शामिल
हैं? अयोध्या के कम से कम 50% तो शामिल है, मात्र देखने के पर्पज से, झांकियों के या इनके सजावटों को, लेकिन दिल से नहीं है। केवल
कैसे कह सकते हैं कि दिल से नहीं है?
ये तो मैं अपनी भावना को ही बता सकता हूँ, इसमें कितना पैसा वेस्ट किया होगा सरकार ने।
वो दिवाली आपकी जो यहाँ की है, स्थानीय है, अयोध्या में जो परंपरागत रूप से मनती आई है, उसमें किस तरह का कोई क्या बदलाव आएगा आपको लगता है?
नहीं, हमारे ख्याल से बदलाव इसमें कुछ भी नहीं आएगा। जो योगी साहब की दिवाली है वो तो मना के चले जाएंगे, फिर तो हम अयोध्या वाले साथ साथ रहेंगे ना।
यहाँ पे आपको आपस में यहीं के लोगों को मिल करके ही मनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
अयोध्या में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अब आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने ट्विटर पर लिखा कि हर साल दिवाली से पहले पटाखों से होने वाले एक दिन के ध्वनि प्रदूषण पर विवाद शुरू हो जाता है, जबकि हर सुबह लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर कोई विवाद नहीं होता। यह पहली बार नहीं है जब राज्यपाल तथागत रॉय ने इस तरह की टिप्पणी की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने बीबीसी बांग्ला संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली से बात की।
त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय जो बीजेपी और आरएसएस से बहुत सालों से जुड़े रहे, तो उनका एक ट्वीट मंगलवार शाम को लिखा। उसमें उन्होंने यही लिखा है कि दिवाली से पहले हर साल ये लड़ाई शुरू हो जाता है कि जो फायर क्रैकर्स है इससे साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन होता है, पर कोई ये नहीं पूछता है, कोई बात को लेकर लड़ते नहीं है। सुबह 4:30 बजे अजान जो दिया जाता है मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए, तो इसके खिलाफ कोई नहीं लड़ता है, जबकि फायर क्रैकर्स तो साल में सिर्फ 2-3 दिन ही जलाया जाता है। तो इस ट्वीट आने के बाद ही उसके समर्थन में और उसके खिलाफ उसको उनको आलोचना करते हुए काफी रिएक्शंस भी आने लगे। और हमने जब उनसे तथागत रॉय से पूछा था कि ये ऐसे ट्वीट करने का मतलब क्या था, मकसद क्या था, तो मिस्टर रॉय का यही कहना था कि कुरान हदीस में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि माइक के जरिए, लाउड स्पीकर के जरिए अजान दिया जाए। तो मुआजिन जो अजान देते हैं वो मस्जिदों में जो मीनार है उसके ऊपर चढ़ के अजान दे, लाउड स्पीकर के जरिए नॉइस पॉल्यूशन क्यों किया जा रहा है? और फायर क्रैकर्स और अजान दोनों के जो नॉइस पॉल्यूशन होता है ये एक ही यार्डस्टिक से देखना चाहिए, यही तथागत रॉय का कहना था।
इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के क्या इस पे बयान आ रहे हैं?
तथागत रॉय का जो ट्वीट करते हैं वो खासकर कोई राजनीतिक पार्टियां अलग से ध्यान भी नहीं देते हैं, हालांकि ये हो गया है अब, क्योंकि तथागत रॉय का ट्वीट अगर देखा जाए तो उनका एक ही टाइप का ट्वीट वो करते हैं और उनका खुद का जो विश्वास है हिंदुत्व के प्रति, बीजेपी आरएसएस के प्रति, वो छुपाते भी नहीं है। ट्विटर हैंडल में जो उनका अपना परिचय जो दिया है उसमें एक तरफ जब वो लिख रहा है कि वो त्रिपुरा के गवर्नर है, उसके साथ ही साथ वो इंजीनियरिंग किया है उसका भी जिक्र है और आरएसएस बीजेपी का भी जिक्र है, वो छुपाते नहीं है।
एक संवैधानिक पद पर बैठा शख्स इस तरीके की बातें करता है, क्या इस पे किसी विशेषज्ञ का कुछ कहना है आपकी नजर में?
मैंने खुद तथागत रॉय से ही पूछा था ये सवाल कि एक संवैधानिक पद, गवर्नर जैसे एक सम्माननीय पद पर बैठे हुए या कि किसी एक मजहब के जो धार्मिक रिवाज है उसके खिलाफ लिखना कहाँ तक सही है? तो तथागत रॉय का ये कहना था कि कहीं ये लिखा नहीं है या उनको दिखा नहीं कहीं कि गवर्नर के पद पर बैठे हुए या राज्यपाल की कुर्सी पर जो बैठेगा उनको अपना विचार व्यक्त करने का रोक टोक है। ये भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई संविधान ला करके दिखा दे उनको या किसी हाईकोर्ट की ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑर्डर दिखा दे उनको कि राज्यपाल अपना खुद का विचार लिख नहीं सकता है पब्लिकली, तो वो मान लेंगे। ये
थे बीबीसी बांग्ला संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली। अब वक्त है दिल्ली से छपने वाली अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा मेरे साथ स्टूडियो में हैं और जो अखबार उनके सामने है मैं देख पा रहा हूँ दिवाली की तस्वीरों से सजे हुए हैं। दिलनवाज क्या कुछ है आज के अखबारों में?
जी कुलदीप, आज के अखबारों में जो दिवाली की रोशनी है वो बिखरती दिख रही है और सबसे पहले जिक्र करूँगा नई दुनिया में प्रकाशित तस्वीर का। अयोध्या में कल दिवाली, छोटी दिवाली मनाई गई और सरयू के किनारे पर दीप प्रज्वलित है। बेहद दिलकश तस्वीर नई दुनिया ने प्रकाशित की है और ऐसी ही तस्वीरें बाकी अखबारों में भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए भगवान राम और सीता का रूप धरे कलाकार दिख रहे हैं।
यानी उत्तर प्रदेश सरकार की जो कवरेज थी वो ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर।
बिल्कुल, दैनिक जागरण बता रहा है अयोध्या में त्रेता जैसी दिवाली। वहीं दैनिक भास्कर पाठकों को श्रीलंका लेकर के गया है और सीता मंदिर की तस्वीर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। पूरे पन्ने पर यही तस्वीर नजर आ रही है और दिवाली के खुशियों के बीच खबर झारखंड में भूख से मरी उस बच्ची से जुड़ी हुई। इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि जिस बच्ची की मौत खाना न मिलने से हो गई थी उसके परिवार को 8 महीने से राशन नहीं मिला था। ये इंडियन एक्सप्रेस आज का बता रहा है। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है, महाराष्ट्र में आजकल जो है किसानों की मौत का जिक्र हो रहा है कीटनाशक की वजह से। अखबार बता रहा है कि भारत में 7 ऐसे खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है जिनका दुनिया में इस्तेमाल बंद हो चुका है। इसके अलावा अखबार में उत्तराखंड से खबर है, जो वन गुज्जर समुदाय है वहाँ का, ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है। इस समुदाय में लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है और किस तरीके से वहाँ नाबालिग बच्चों की शादियों की तैयारियाँ चल रही हैं ये खबर आज का द टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है। इसके अलावा जो भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच गर्माहट के संकेत अमेरिका ने दिए थे, द टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर वो खबर है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज अखबारों की समीक्षा के लिए। ये बीबीसी रेडियो है और कुलदीप मिश्र को सुन रहे हैं आप। दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित कहती हैं कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार से मायूस हैं। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से खास बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व और अगले आम चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर भी बेबाकी से बात की। जुबैर अहमद ने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि केजरीवाल की 2.5 साल पुरानी सरकार के काम को वो किस तरह देखती हैं।
एज अ सिटीजन आई फील दिल्ली बहुत नीचे चला गया है, तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है लोगों में। अब वो केजरीवाल जी पर है कि वो किस तरह से उसे ठीक करें।
वो कई बार ऐसा कह चुके हैं कि उनकी सरकार और बेहतर करती अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उनकी मुराद उससे है कि मोदी जी अगर उनको काम करने देते।
गवर्नर को हमें साथ अगर जो नहीं लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, क्योंकि हर चीज़ गवर्नर का फाइनल सिग्नेचर होता है, उसी से आप लड़ लेंगे तो वो फाइनल सिग्नेचर ना करें। अच्छा, और ये 2 पोजीशन जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके पास मैं गई थी और अडवाणी जी के पास गई थी, तब जाके मेट्रो आई थी, वो तो हमारे नहीं थे, बीजेपी के थे।
शीला दीक्षित जी आप राहुल गांधी को बहुत ज़माने से जानते हैं, जब वो छोटे बच्चे थे तब से जानते हैं, अब तो इंदिरा गांधी के ज़माने से सियासत में हैं, उनको आपने किस तरह से अभी तक इवॉल्व होते हुए देखा है एज ए लीडर?
अच्छा इवॉल्व कर रहे हैं वो, थोड़ी बहुत कमियां कमजोरियां होती हैं क्योंकि जब इंसान को वो नहीं होता है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज नहीं होती है, और बहुत सारा कुछ एडवाइजर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी को कह राइट ऑफ कर देना या राइट ऑन कर देना, मैं समझती हूँ ये गलत बात है। उनको मौका तो मिल दीजिए, अभी तो उनको मौका ही नहीं मिला है, प्रेसिडेंट भी नहीं बने हैं कांग्रेस के, बनने दीजिए ना।
एक शब्द जो है वो चिपक गया सबकी ज़बान पे, पप्पू, तो वो जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उससे उनकी छवि पे असर पड़ा आपको लगता है?
देखिए कुछ वक्त तक तो पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई कुछ कह दे, आप मुझे आप कह दीजिए उल्लू है, तो कुछ दिन तो उसका असर होगा ही, जब तक मैं साबित ना कर दूँ कि हाँ मैं उल्लू नहीं हूँ।
अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक मजबूत अपोजिशन पार्टी, जबकि इलेक्शन अपना नज़दीक है, उभर कर सामने नहीं आ सकी है।
मैं आपसे सच बात बोल, बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारा इसके बारे में चर्चा हुई है, कांग्रेस ने चर्चा में अपनी मीडिया को भी दिया है, लेकिन मोदी जी की सरकार का मीडिया पर हाथ है, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं होने देता है, तो जो हमारी बातें निकल कर आनी चाहिए जिसमें आपको सबको पता चल जाए कि हाँ ये कांग्रेस से कहा है, वो होता है। हमारे में ये कमी नहीं है, ये सिस्टम में कमी बना दी गई है।
2019 आम चुनाव में क्या पार्टी आपकी वापस आएगी?
ये वापस आएगी कहना बड़ा मुश्किल है, इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इम्प्रूव करेगी और मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि राहुल गांधी की लीडरशिप जो है वो उभर कर आएगी, उसका फायदा पार्टी को होगा।
कहीं ना कहीं तो कभी है ना पार्टी में, उसको पार्टी बोलती थी
एक्चुअली, कहीं ना कहीं कमी है, बट वी स्टिल फील वेरी प्राउड। हार जीत हम जानते हैं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, ये तो डेमोक्रेसी में चलता रहता है, और 10 साल राज किया उसके बाद हार गए, कोई बात नहीं, अगली दफा जीत,
चुनाव तो जीतने की नहीं लड़ा,
हाँ तो जीतेंगे, अब की बार जीतेंगे
2019 में,
हाँ
जीतेंगे।
हाँ, आप मुझे बड़ा सस्पिशियसली पूछ रहे हैं, आपका ये सवाल जो है वो जरा वक्त से पहले है, वक्त आने दीजिएगा, देखिए।
ये थी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। हाल ही में महाराष्ट्र के विदर्भ में कपास की फसल पर कीटनाशक के छिड़काव से 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी। महीने भर के अंतराल के बाद अस्पताल में किसानों के भर्ती होने के आंकड़े बढ़ते गए। महाराष्ट्र सरकार ने SIT की घोषणा की, कुछ अफसर सस्पेंड किए गए और कीटनाशक बेचने वालों के लाइसेंस भी रद्द किए गए। मौत के कारणों की तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन ऐसे हादसे क्यों हुए? क्या इसकी जड़ में BT कॉटन की नाकामी है? यवतमाल से BBC संवाददाता मयूरेश कोन्नूर की रिपोर्ट।
2002 से भारत में GM यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित BT कॉटन बीज का इस्तेमाल सरकार की नीति के तहत बढ़ा है। गुजरात और आंध्र प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र कपास की खेती में BT कॉटन बीज का इस्तेमाल करने वाले राज्यों में आगे है। लेकिन जब यवतमाल की त्रासदी की घटना के बाद विदर्भ के किसानों से बात की गई, तब उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से कपास की फसल पर वो ऐसे कीड़ों का प्रभाव देख रहे हैं जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। एक विशेष प्रकार का कीड़ा जिसे स्थानीय भाषा में बोंडड़ी और कृषि परिभाषा में पिंक बोलवर्म कहते हैं, उसका प्रभाव अचानक बढ़ गया है। कीड़े फसल खत्म न कर दें, इस डर से किसान अधिक मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यवतमाल के कलम गांव के नजदीक ही नरेंद्र गावंडे अपनी 28 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर कपास की खेती करते हैं। पिछले 2 साल से वो भी इस नई समस्या से चिंतित है।
आधी जे BT रोग येत नव्हते, आपण जे आवडीन लावत होतो का बोंडळी येत नाही, फवारणी करा लागत नाही।
पहले BT पर यह रोग नहीं आते थे, कीड़े नहीं थे, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं था, खेत ज्यादा जरूरी नहीं थे, लेकिन अब वह बात नहीं रही। अब सब तरह के कीड़े हमें दिखने लगे हैं, तो अब इसे BT कैसे कहा जाए? किसानों के आगे ज्यादा कीटनाशक छिड़कने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, कीड़े के लिए वह अलग अलग कीटनाशक इस्तेमाल करके देख लेते हैं।
ये थे नरेंद्र गावंडे के शब्द। किसान ये बीज और कीटनाशक सरकारी लाइसेंस प्राप्त कृषि सेवा केंद्र से खरीदते हैं। जब हम इन केंद्रों पर गए, तब वहाँ भी पिछले 2 साल से अचानक बढ़ी कीटनाशक की मांग की पुष्टि हो जाती है। कलम गांव में ही प्रफुल्ल कापसे कई सालों से प्रगत कृषि सेवा केंद्र चलाते हैं।
दिवसेंदिवस बोंडळीच्या विरुद्ध
यह जो बोलवर्म है उससे लड़ने की BT बीज की क्षमता अब कम हो गई है, तो अब किसानों ने उस पर भी कीटनाशक छिड़कना शुरू कर दिया है और इसी वजह से मांग और इस्तेमाल दोनों बढ़ गए हैं। कीटनाशकों का इस्तेमाल 25-30% बढ़ गया है।
ये थे प्रफुल्ल कापसे के शब्द। स्थानीय प्रशासन, किसान और विक्रेताओं की माने तो पोलिस नाम के एक कीटनाशक मिश्रण का इस्तेमाल ज्यादा हुआ जो गन्ने की खेती में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा समझा जा रहा है कि यही मिश्रण अधिक जानलेवा रहा। सरकार अब ये रसायन बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मयूरेश कोन्नूर, BBC यवतमाल।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने अगली सदी में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की बात कही है। नाइजर में सैन्य अभियान के दौरान मारे गए एक अमरीकी सैनिक की पत्नी से बातचीत में की गई अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने पता किया है कि बीते 30 साल में उड़ने वाले कीड़ों की संख्या में भारी कमी आई है। ब्राजील की एक संसदीय समिति ने राष्ट्रपति मिशेल टेमेर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा न चलाने के लिए मतदान किया है। रूस की चर्चित हस्ती सेनिया सोपचाक का कहना है कि वो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगी। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया सिंधु वासिनी ने। तो अब कुलदीप मिश्र को समस्त सहयोगियों के साथ दीजिए इजाजत और खबरों और उनके विश्वसनीय विश्लेषण के लिए आते रहिए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।